नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 18 अक्टूबर से तीन चरणों में होंगे। हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा। केंद्र ने 3 मेट्रो रेल परियोजनाओं और 2 नए हवाई अड्डों के निर्माण की स्वीकृति दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन के कारण देश भर के कई शहरों में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश, डॉक्टरों के विरुद्ध हिंसा के मामले में संस्थान के प्रमुख को अधिकतम 6 घंटे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य। और 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म थिरुचित्रामलम्बम के लिए नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को मिला। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 18 तारीख से तीन चरणों में मतदान होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में मतदान कार्यक्रम की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे तथा अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में 87 लाख से अधिक मतदाता 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए 11,800 से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। श्री राजीव कुमार ने बताया कि आयोग ने हाल में चुनाव तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया और लोगों में काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने राज्य के युवाओं और जनता से एक खास अपील भी की।
लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी।
निर्वाचन आयुक्त ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 2 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करेंगे।
हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 करोड़ इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर तथा हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में भाजपा महासचिव तरुण चुग ने विश्वास व्यक्त किया कि उनकी पार्टी को इन चुनावों में जनता का आशीर्वाद मिलेगा।
आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बेड़ियों से मुक्ति मिली, जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी का के प्रति लोगों का एक विशेष तरह का आदर है और वो आदर विकास व विश्वास की नीतियों पर चल रहा है। विकास और विश्वास की नीतियों पर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। बायकॉट की राजनीति को छोड़कर भारी मतदान की ओर हम बढ़े।
कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दोनों राज्यों में जीत की आशा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश में 3 नई मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं में 15,600 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु मेट्रो का तीसरा चरण, 12,200 करोड़ रुपए का ठाणे रिंग रोड मेट्रो और तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए की लागत से पुणे मेट्रो रेल विस्तार परियोजना शामिल है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि बेंगलुरु मेट्रो परियोजना से शहर में यातायात सुव्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी।
मेट्रो का पिछले 10 वर्षों में बहुत विस्तार हुआ। 10 साल पहले जहां सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 21 सिटीज में मेट्रो है। आज उसी क्रम में 3 और मेट्रो प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। 2 नए एयरपोर्ट फैसिलिटीज का भी आज अप्रूवल हुआ है।
श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बिहार के बिहटा तथा पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे में नई इकाइयां बनाने को स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि 1,549 करोड़ रुपए की लागत से बागडोगरा हवाई अड्डे पर नई इकाई विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहटा में इसकी लागत 1,413 करोड़ रुपए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये अत्यधिक प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा कि SSLV अंतरिक्ष अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और निजी उद्योग को भी प्रोत्साहित करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने देश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। श्री यूनुस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत में यह आश्वासन दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में विभिन्न चिकित्सा संघों की जारी हड़ताल के कारण देशभर के कई शहरों में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई हैं। एक रिपोर्ट।
बिहार के पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल तथा नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पंजाब के अमृतसर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने सभी गैर आवश्यक सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ बॉन्डेड रेजिडेंट डॉक्टर्स और राज्य में मेडिकल इंटर्न्स एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल हो गए। केरल में भी रेजिडेंट डॉक्टर और परास्नातक मेडिकल छात्र आज राज्य के अस्पतालों में हड़ताल पर रहेंगे। उधर गोवा में भी इस घटना के विरोध में 1,000 से अधिक डॉक्टर कल 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवाओं के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या के मामले में स्थिति तनावपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 2 घंटे के लिए चक्का जाम का आह्वान किया। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए 12 घंटे की हड़ताल रखी। पुलिस ने कई बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा में भाग लिया और तेज सुनवाई तथा पीड़िता के लिए शीघ्र न्याय की मांग की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों से हिंसा के मामले में संबंधित संस्थान के प्रमुख को अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थान की तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने इस संबंध में कहा कि हाल ही में यह देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा करना आम बात हो गई है और कई स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ता है। सरकार किसानों तक पहुंच बनाने के लिए रेडियो पर एक कार्यक्रम किसानों की बात शुरू करेगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की ही तरह होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किसानों से बातचीत करते हुए बताया कि ये कार्यक्रम अगले महीने शुरू होगा। श्री चौहान ने कहा कि उनके साथ कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। लोक प्रसारक प्रसार भारती और संसद टेलीविजन के बीच संसद भवन परिसर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। संसद टेलीविजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुन्हानी और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी तथा दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। श्री द्विवेदी ने इस अवसर पर कहा कि हम अपने कार्यक्रम आपस में साझा करेंगे।
हम अपने जो भी कार्यक्रम है वो आपस में शेयर करेंगे, जो हमारे पास आर्काइव्स और दूसरे फुटेज हैं एक दूसरे के वो हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। सेटअप बॉक्स के हमारे ओटीटी के डिजिटल वाले हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे संसद टीवी जो है प्रसारित होगा और साथ ही साथ हमारी जो ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज हैं जो नेशनल अकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट है उसकी फैसिलिटीज का भी उपयोग संसद टीवी के जो कर्मचारी हैं उनको भी समय समय पर प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। दोनों ही संस्थाओं को इससे आने वाले दिनों में काफी लाभ होगा।
आकाशवाणी के प्रति घंटा समाचार बुलेटिन के प्रसारण क्रम में संशोधन किया गया है। ये परिवर्तन 17-18 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे के बुलेटिन के साथ लागू होगा। पहले हिंदी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद 5 मिनट के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के कल वर्चुअल माध्यम से मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन का विषय सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी।
This is the third edition. This will be held tomorrow in virtual format, as we have done on two occasions in the past. All Global South countries have been invited.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी को श्री नेतन्याहू ने फोन किया था। बातचीत के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में तनाव घटाने पर बल दिया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में आईना ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऋषभ शेट्टी ने कन्नड़ फिल्म कंतारा में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। एक रिपोर्ट।
मलयालम फिल्म अत्तम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया है, जबकि आईना को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का सम्मान मिला है। वहीं फिल्म ऊंचाई के लिए सूरज बड़जातिया को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा फीचर फिल्म में हिंदी फिल्म गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं नॉन फीचर फिल्म में हरियाणवी फिल्म फौजा को सर्वश्रेष्ठ संगीत का सम्मान मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार अरिजीत सिंह और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक का पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। इसके अलावा पोनियन सेल्वम पार्ट 1, KGF 2, ब्रह्मास्त्र, अपराजितो, कावेरी अंतर्धन, दमन और बागीदी धी जैसी फिल्मों को भी पुरस्कार मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और एथलीट भाग्यश्री जाधव भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय दल के विदाई समारोह में आज इसकी घोषणा की गई। पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में होगा, जिसमें भारत के 84 खिलाड़ी भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 18 अक्टूबर से 3 चरणों में होंगे। हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान होगा। केंद्र ने 3 मेट्रो रेल परियोजनाओं और 2 नए हवाई अड्डों के निर्माण की स्वीकृति दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन के कारण देशभर में कई शहरों में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।